તારીખ 1/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 527 અને 528 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 493
પત્ર પૂજ્ય શ્રી સૌભાગ્યભાઈ શ્રી સાયલા યહાં કુશલતા હૈ આપકા એક પત્ર આજ આયા હૈ પ્રશ્નો કે ઉત્તર અબ તુરંત લિખેંગે આપને આજ કે પત્ર મેં જો સમાચાર લિખા હૈ તત્સબુદ્ધિ શ્રી રેવાશંકર ભાઈ કો રાજકોટ જો રાજકોટ હૈ લિખા હૈ સીધે આપકો ઉત્તર લિખેંગે વ્યવહારિક બાત હોગી ગોશલિયા કે દોહે મિલે હૈ દોહા લિખ કર ભેજા હોગા ડુંગરભાઈ ને ઉનકા ઉત્તર લિખને જૈસા વિશેષ રૂપ સે નહીં હૈ અને ખાસ ઉત્તર દેને યોગ્ય નહીં હૈ સામાન્ય બાત હૈ એક અધ્યાત્મ દશા કે અંકુર સે યાની સ્ફુરણ સે યે દોહે ઉત્પન્ન હોના સંભવ હૈ અને આધ્યાત્મિક વિષય પર કોઈ સ્ફુરણ હોને સે એસા બાત લેના સંભવ હૈ પરંતુ યે એકાંત સિદ્ધાંત રૂપ નહીં હૈ પરંતુ જો બાત લિખી હૈ એસા કોઈ સિદ્ધાંત નહીં હૈ કોઈ બાત હોગી જો ખોલ કરકે નહીં લિખી હૈ અબ જો પત્ર કા વિષય હૈ ખાસ કોઈ પેરેગ્રાફ ઇસી વિષય કે હિસાબ સે યે પત્ર લિયા હૈ શ્રી મહાવીર સ્વામી સે વર્તમાન જૈન શાસન કા પ્રવર્તન હુઆ હૈ અભી જો જૈન શાસન ચલ રહા હૈ ભારતવર્ષ મેં ઉસમેં મહાવીર સ્વામી કા ઉપકાર હૈ 2500 સાલ પહેલે જબ ઉન્હોને દિવ્ય ધ્વનિ સે ધર્મ પ્રવર્તાયા ઉસકી પરંપરા આજ ભી ચલ રહી હૈ ઉનકી વાણી સે ગણધર આદિ ગૌતમ સ્વામી ને 12 અંગ કી રચના કી ઓર ઇસકે બાદ જો ભી પરંપરા મેં આચાર્ય હુએ ઉન આચાર્યો ને ભગવાન કા ઉપદેશ કો અભી તક ટિકાએ રખા હૈ ઇસલિયે ભગવાન કી વાણી સે બહુત બડે પૈમાને મેં ધર્મ કા પ્રચાર પ્રસાર હુઆ ઓર યહી પરંપરા આજ તક ચલ રહી હૈ વે અધિક ઉપકારી યા પ્રત્યક્ષ હિત મેં પ્રેરક ઓર અહિત કે નિવારક એસે અધ્યાત્મ મૂર્તિ સદગુરુ અધિક ઉપકારી ક્યા પ્રશ્ન ચલા હૈ પરોક્ષ મેં તીર્થંકર કો લિયા કે જિસકા અભી શાસન ચલ રહા હૈ इनका उपदेश की परंपरा अभी भी चालू है और इसी परंपरा में वो ज्ञानी सदगुरु हुए हैं भगवान की परंपरा में हुए ना सदगुरु शासन भगवान महावीर स्वामी का जो शासन है वो शासन की परंपरा में तो ये ज्ञानी हुए हैं अब भगवान रह गए परोक्ष और ये ज्ञानी है प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष हित में प्रेरणा करने वाले और अहित से छुड़ाने वाले ऐसे अध्यात्म मूर्ति सदगुरु अधिक उपकारी के जो महावीर स्वामी हो गए वे अधिक उपकारी कौन से ज्यादा उपकारी है सौभाग्य भाई को प्रश्न लिखा है यह प्रश्न माकू भाई की तरफ से है। माकू भाई करके इनके भागीदार थे, कृपाल देव के भागीदार थे, बड़ौदा के थे, माणिकचंद भाई करके थे, माकू भाई सब उनको बोलते थे, वो फाइनेंसिंग पार्टनर थे। वो खुद भी जोहरी थे और कृपाल देव को और हीरे की रत्न की परीक्षा करने का शायद उन्होंने सिखाया था। वो तो 20 साल की उम्र में धंधे में तो लगे, लेकिन आगे पीछे कोई अनुभव तो नहीं था व्यापार का, और हीरा का व्यापार का, रत्नों का व्यापार का। तो सब प्रकार के हीरा और अलग अलग प्रकार के जो रत्न होते हैं, मोती के भी व्यापार करते थे, नीलम पन्ना सब प्रकार के, तो शायद माकू भाई ने सब सिखाया था। फिर बाद में वो भी कृपाणु देव के प्रति श्रद्धान्वित हुए थे। शुरू शुरू में तो उनकी बुद्धि की विचक्षणता देख करके भागीदारी में व्यवसाय शुरू किया। बाद में परिचय होने के बाद वो कृपाणु देव के प्रति श्रद्धान्वित हुए थे और ऐसे तत्व के विचार में वो भी आए थे। तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि जो महावीर स्वामी जिसका शासन प्रवर्त रहा है वो ज्यादा उपकारी या प्रत्यक्ष सद्गुरु है वो ज्यादा उपकारी। यह प्रश्न माकू भाई की तरफ से है। इस विषय में इतना विचार रहता है कि महावीर स्वामी सर्वज्ञ है, महावीर स्वामी तो
सर्वज्ञ है
और प्रत्यक्ष पुरुष आत्मज्ञ सम्यक दृष्टि है। सर्वज्ञ 13वें गुण स्थान में वाले होते हैं और ये चतुर्थ गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि होते हैं, अर्थात महावीर स्वामी विशेष गुण स्थान में स्थित थे। महावीर स्वामी विशेष गुण स्थान में स्थित थे। हाँ, वो तो पार तो अभी हो गया, अभी तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन 13वें गुण स्थान में जब थे तब बहुत धर्म की प्रवृत्ति किया था और इतनी ज्यादा पैमाने में धर्म की प्रवृत्ति किया था कि इस कारण से अभी भी हमको धर्मों का कोई मिल रहा है, धर्मात्मा मिल रहा है या जिनवाणी मिल रही है, शास्त्र मिल रहा है, वो भगवान का उपकार है, महावीर स्वामी का दिव्य ध्वनि की परंपरा से ये बात चली। तो वो भी विशेष गुणस्थान में स्थित थे, जब उपदेश दिया तब चतुर्थ गुणस्थान में नहीं थे, तब तो सर्वज्ञ थे, 13वें गुणस्थान में थे और इसी गुणस्थान में उपदेश दिया था, मैंने सर्वोत्कृष्ट गुणस्थान में रह करके उपदेश दिया था। सदमस्त अवस्था में तीर्थंकर कभी उपदेश नहीं देते, तीर्थंकर कभी छदमस्त होते हैं तब तक तो उपदेश नहीं देते हैं, उन्हीं अवस्था में भी नहीं देते हैं। तो वो ज्यादा उपकारी या आत्मज्ञ सम्यक दृष्टि है। महावीर स्वामी की प्रतिमा की वर्तमान में भक्ति करें, मंदिर बनवाकर उसमें भगवान की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके उसी भक्ति भी करें, पूजा करें, उतने ही भाव से। कितने भाव से? जितने भगवान की भक्ति का भाव हो उतने ही भाव से, कम भाव से नहीं। चतुर्थ गुण स्थान है इसलिए कम भाव भाव नहीं बात नहीं लिखे, उतने ही भाव से प्रत्यक्ष सदगुरु की भक्ति करें। इन दोनों में विशेष हित योग्य किसे कहना योग्य है? हित के प्रेरक नहीं है और अहित के निवारक भी
नहीं है, हितकारी जरूर है,
हितकारी जरूर है, प्रेरणा नहीं आती। इसका उत्तर आप दोनों विचार कर सविस्तर लिखिएगा, उत्तर खुद ने नहीं दिया है। माकू भाई का प्रश्न है वो सौभाग्य भाई को लिख दिया और प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट कर दिया, ज्यादा स्पष्ट कर दिया कि देखो भाई गुणस्थान का भी फर्क है और दोनों की भक्ति होती है। अब दोनों में विशेष हित योग्य कौन है, प्रत्यक्ष सदगुरु की भक्ति या भगवान की भक्ति? प्रश्न का उत्तर देना। अब क्या समझना आपने को, एक पत्र का स्वाध्याय से क्या समझना कि अगर भगवान की भक्ति ज्यादा उपकारी होती तो वो तो तेर आंख जिसको आता है वही समझ सकता है कि चार से तेर ज्यादा ही है और तेर से चार कम ही है, तो फिर इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं थी। ये प्रश्न रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बात सीधी साधी नहीं है, जबकि जो बुद्धि लगाते हैं वो ऐसे ही बुद्धि लगाएंगे कि भगवान तेरहवें गुण स्थान है, कहां भगवान और कहां भगवान के भक्त ज्ञानी, वो तो भक्त है और ये भगवान है, सर्वज्ञ है, भगवान है उतना ही नहीं है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ही ज्यादा उपकारी हो सकते हैं, वो बात नहीं है। वो बात नहीं है, प्रत्यक्ष जो आत्मज्ञ सम्यक दृष्टि वो ज्यादा उपकारी होते हैं, ये अभिप्राय है इधर कृपालु देव का, यही अभिप्राय है और सभी ज्ञानियों का यही अभिप्राय है। नमस्कार मंत्र में अरिहंत भगवान को पहला नमस्कार किया और सिद्ध भगवान को पीछे नमस्कार किया, ये इसी न्याय की गवाही देता है, यही न्याय है इसमें, जो न्याय है ना दिशे चलाया है। और सुगानी जी ने भी कहा मेरे लिए तो अनंत तीर्थंकरों से भी अधिक है, तो बात तो सब जगह से मेल खाती है। फिर भी जो बुद्धि को लगाता है वो ऐसा लगाएगा कि तेरहवें गुण स्थान है वो 1008 बोले जाते हैं, क्या 1008 श्री महावीर स्वामी और गौतम स्वामी को 108 श्री गौतम स्वामी ऐसे बोला जाएगा, 108 श्री कुंदकुंदाचार्य देव है और आत्मज्ञ सम्यक दृष्टि को कुछ नहीं लग बोला जाएगा, अविरत सम्यक दृष्टि बोला जाएगा, एक भी आंख नहीं देंगे भगवान को। 1008 गुण प्रकट हुए हैं, 1008 मैंने क्या, 1008 मुख्य गुण जिसको प्रकट हुए हैं ऐसे सर्वज्ञ तीर्थंकर होते हैं। मुनिराज को 108 गुण प्रकट हुए, तो जिसको ज्यादा गुण प्रकट हुआ उसके प्रति ज्यादा बहुमान करना, ज्यादा भक्ति पूजा करना और जिसको कम है उसका कम करना, तोल माप बराबर रखना, वरना मिथ्यात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथ्यात हो जाएगा। ऐसे भ्रम में कई विद्वान लोग भी भ्रम में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष उपकारी होते हैं, वो सर्वाधिक होते हैं, वो चाहे गुण किसी भी गुण स्थान में हो। जी परोक्ष जिनो उपकार तो आत्मसिद्धि में लिखा है, क्योंकि वो आत्मसिद्धि 30 के साल में लिखा है और ये है 27 साल में, मैंने पहले से ही विचारधारा वही थी, आत्मसिद्धि की रचना तो बाद में 3 साल बाद हुई है, इसके पहले ये विचारधारा है अपने। तो कोई व्यावहारिक बात लिखी है रिवाशंकर भाई के संबंध में, तो ये जो मुद्दा है वो उतना ही है। कि प्रत्यक्ष का महत्व ऐसा आए बिना क्या सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर से भी प्रत्यक्ष का महत्व अधिक आए बिना और समझे बिना, समझ से तो महत्व आएगा ना, तो ऐसी महत्ता समझे बिना जो लाभ अपने को होना चाहिए वो लाभ होगा नहीं। ये बात है, मुद्दा तो उतना ही है उसमें कि इतना हमारी समझ में वो बात आती है कि नहीं आती है, या सुभाष भाई की समझ में वो बात आई है कि नहीं आई है। उन्होंने प्रश्न रख दिया, माकू भाई का प्रश्न रख दिया कि देखो भाई ऐसा प्रश्न करते हैं, आप उत्तर लिखिएगा, क्या समझते हो? वो तो है, गुरु महिमा बहुत आई है, गनीमत में ये है। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पादम। ध्यान का मूल तो गुरु मूर्ति है, गुरु का ध्यान करे ठीक, और पूजा मूलम गुरु पादम, गुरु के चरणों की पूजा करें। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य मिला मंत्र समझ लो, इसमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? वो बात लगाने की जरूरत नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु की प्रसन्नता हो गई समझ लेना कि मोक्ष का मूल आ गया। अभी बाद में मोक्ष भले बाद में होएगा, लेकिन इसकी कृपा कृपा है वही मोक्ष का मूल है। वो लोग उतना गुरु की महिमा करते हैं। हाँ वो भी रात को ही चली थी वो बात, वो भी उतना समझते हैं। अब गुरु की भूल निकालना क्या नहीं निकालना है? कि मंत्र बोलम गुरु वाक्यम, गुरु का वाक्य मिला मंत्र है। कैसा मंत्र है? कि संसार में भटकने वाले पामर प्राणी को सिद्धालय में बिठा दे, ऐसा मंत्र है। वो मंत्र करते हैं ना जादू मंत्र, तो क्या है कि बंदर में से आदमी बना दिया, पक्षी में से मनुष्य बना दिया। बताते हैं कि नहीं बताते? एक पेटी में पक्षी को रखते हैं, खाली पेटी में, खाली पेटी बता, देखो बिल्कुल खाली पेटी है। पक्षी रखते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं तो अंदर से आदमी निकलता है, मनुष्य निकलता है। ऐसे पामर प्राणी संसार में भटकता है, उसको सिद्ध बना देते हैं, सिद्ध परमात्मा बना देते हैं, ऐसा मंत्र है। महत्व समझाने के लिए खुद ने उत्तर नहीं दिया, प्रश्न को कैसा स्पष्ट करके रख दिया, समझने वाले को समझ में आ जाएगा।
जीने स्वप्न में भी संसार सुख की इच्छा नहीं रही और जिन्हें संसार का स्वरूप संपूर्ण निसार भूत भाषित हुआ है, ऐसे ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष का विशेषण कितना लगाया है कि उसको स्वप्न में भी संसार सुख की इच्छा नहीं रही। संसार में सुख है ऐसा स्वप्न भी नहीं आता, तो फिर इसकी इच्छा का सवाल होता ही नहीं। जो जड़ परमाणु है वे परमाणु किसी भी प्रकार के पर्याय को धारण करे, कहीं भी इसमें सुख होता नहीं है। सुख की कल्पना हो सकती है, सुख हो सकता नहीं है। तो फिर इसमें से कोई इच्छा रखना, अपेक्षा रखना, वो बात तो स्वप्न में भी ज्ञानी को होती नहीं है। जिन्हें स्वप्न में भी संसार सुख की इच्छा नहीं रही और जिन्हें संसार का संपूर्ण स्वरूप निसार भाषित हुआ है, संसार के कोई प्रसंग में कोई वस्तु में कोई सार
नहीं है,
नहीं है, सब निकम्मी चीज दिखती है, कोई काम की चीज
नहीं,
नहीं दिखती। ऐसे ज्ञानी पुरुष भी आत्म अवस्था को वारंवार संभाल संभाल कर उदय प्राप्त प्रारब्ध का वेदन करते हैं, उदय प्राप्त प्रारब्ध को भोगते हैं, वो भी आत्म अवस्था को अंदर में संभाल करके भोगते हैं, अपनी सावधानी में है, स्वरूप की सावधानी छोड़ करके वो उदय में जाते
हैं।
यानी के अंशतः परिणाम उदय में लगते हैं, पूरे के पूरे तो लगते
नहीं
है। नहीं है, क्यों पूरे नहीं लगते हैं? कि अंदर में स्वरूप की सावधानी है, इसलिए मुख्य रूप से तो स्वरूप में वो सावधान है और ऊपर ऊपर से मैंने बेसावधानी से उदय में वो उपयोग जाता है, सावधानी से नहीं जाता, बेसावधानी से जाता है, यानी उदय की प्रवृत्ति अप्रयत्न दशा रूप होती है, जबकि आत्मा अवस्था स्वप्रयत्न दशा रूप होती है, ये फर्क है। मुमुक्षु जीव को ज्ञानी के स्वरूप को पहचान करके अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। मुमुक्षु है तो किस भूमिका का है वो सवाल है। मुमुक्षु कहने से कोई एक ही भूमिका है ऐसा तो है नहीं, तो मुमुक्षु को कैसा करना इसका ऐसा प्रश्न नहीं हो करके इस भूमिका वाले मुमुक्षु को कैसा करना है ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि सबको एक तरह की मुमुक्षु की स्थिति होती नहीं है, तो सब एक तरह से तो परिणाम कर पाएंगे नहीं, सब मुमुक्षु के परिणाम एक ही कक्षा के एक ही कोटि के हो सकते हैं ऐसा तो बनेगा नहीं। कोई आत्म कल्याण के वांछु है तो कोई स्वरूप की पहचान होने के बाद स्वरूप आश्रय के प्रयत्न में पड़े हुए हैं, ऐसे दो भेद तो मुख्य है। यहां तो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी जिसको संसार में सुख नहीं लगा है, संसार को असार समझे हैं, इसलिए आशा अपेक्षा नहीं है। आशा अपेक्षा तो मुमुक्षु दशा में गई है, फिर तो ज्ञानी हुए बाद में, वो भी उदय प्राप्त प्रारब्ध का भोगवता करने में अपनी आत्मावस्था को बहुत संभालते हैं, बराबर पूरी संभाल करके चलते हैं, ऐसे चलते नहीं है। परंतु आत्मावस्था में प्रमाद नहीं होने देते, आत्मावस्था में आत्मावस्था टिकाए रखें, आत्मावस्था वृद्धिगत होवे, ऐसा प्रसाद चलता ही है, उसमें प्रमाद होता
नहीं है।
प्रमाद के अवकाश योग में ज्ञानी को भी जिस संसार से अंशतः व्यामोह होने का संभव कहा है, उस संसार में साधारण जीव रह करके उसका व्यवसाय लौकिक भाव से करके आत्महित की इच्छा करें, यह न होने जैसा ही कार्य है। देखो ये मार्गदर्शन आया, ये मार्गदर्शन किसके लिए आया? मुमुक्षु के लिए आया। वह बात पहले ज्ञानी के किया, फिर इस पर से मुमुक्षु को मार्गदर्शन देते हैं कि अगर ज्ञानी को प्रमाद का अवकाश हुआ, मैंने जगह हुई कुछ अवकाश, मैंने खाली जगह हुई किसके लिए? प्रमाद के लिए। तो ज्ञानी को भी संसार से अंशतः व्यामोह होने का संभव कहा है,
ज्ञानी को भी थोड़ा मोह हो जाएगा, प्रमाद करेगा तो मोह बढ़ेगा, भले ही चारित्र मोह बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा तो सही। ऐसे संसार में साधारण प्राणी, साधारण जीव, साधारण मुमुक्षु है, उसको व्यवसाय लौकिक भाव से करके, व्यवसाय करके नहीं किया, लौकिक भाव से व्यवसाय करना, इसका मतलब क्या? अभिप्राय में ऐसा है कि मैं जो व्यवसाय करता हूं इससे लोक में मेरी इज्जत अच्छी है, लौकिक भाव से करता है, और मैं जो व्यवसाय करता हूं इससे मुझे जो धन की प्राप्ति होती है, इससे आप इस धन के कारण से लोक में जो सुख के साधन जो भी है वो सब मुझे प्राप्त होगा, ये सब लौकिक भाव है। सांसारिक सुख की अपेक्षा और संसार के इज्जत आदि की अपेक्षा लोभ और मान दोनों कषाय हो गया। परिवार के परिवार का निर्वाह कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं तो अभिप्राय बराबर नहीं है। परिवार के एक एक जीव, प्रत्येक जीव अपना प्रारब्ध लेके आया है कि तुम इसका प्रारब्ध को बनाता है, तो अपना प्रारब्ध लेके आया है, तो फिर इसकी जो चिंता है वो फालतू की है या यथार्थ है? अब चिंता करनी क्या नहीं करनी? चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान तो होगा ही होगा। लेकिन एक भूत सवार हो जाता है, क्या एक ऐसा भूत सवार हो जाता है कि मेरे पर सारे परिवार का बोझा है, क्या मेरे पर सारे परिवार का बोझा है, और वो बोझा मुझे ढोना होगा, मुझे सब करना होगा, वो उपाधि लेके फिरता है, फिर भी होने वाला ही होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी उपाधि करने से कोई अच्छी परिस्थिति बन जाती है, अगर ऐसा होता तो सब ऐसा ही करता है, सबकी परिस्थिति अच्छी ही रहती, लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता। चिंता करो या मत करो, सबके प्रारब्ध अनुसार होगा। जैसे कि एक चौके में और एक बर्तन में से सब खाते हैं, खिचड़ी सबकी अलग अलग पकती है क्या?
नहीं,
एक ही बर्तन में पकती है ना, और ये खिचड़ी खाते हैं सब, एक को बुखार आता है और एक की तंदुरुस्ती बढ़ती है, क्यों? खिचड़ी तो सबों ने एक सी खाई, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका प्रारब्ध उस प्रकार है, इसका प्रारब्ध उस प्रकार है। तो चाहते नहीं कि हमको खिचड़ी खाने से बुखार आए या खुराक खाने से बुखार आए, आहार तो तंदुरुस्ती के लिए खाया जाता है, फिर भी बीमारी आती है क्यों? और सबको नहीं आती है, किसी को आती है किसी को
नहीं आती
है। वो तो बात अलग, लेकिन प्रारब्ध अनुसार परिणाम होता है, वो दाना जो भी जिसने खाया परिणाम प्रारब्ध अनुसार होगा। आदमी है उसका आयु पूरा हो जाता है, और घर में छोटे छोटे बच्चे वाले भाई रह जाती है अकेले, और समाज को और परिवार वाले को करुणा आ जाती, अरे रे ये नौकरी करता था अब तो उसका कोई आमदनी तो रे नहीं, ये लोग कैसे जिएंगे। तो सब मिलके फंड बना लेते हैं और उसकी फिक्स डिपॉजिट रख दे करके उसको दे देते हैं। अगर वो आदमी जिंदा रहता तो जिंदगी में उतनी फिक्स डिपॉजिट बनने वाली नहीं थी जो मरने के बाद बन गई। क्योंकि जितना तनख्वाह आता था उसमें तो उसका खर्चा निकलना भी कोशिश से भी मुश्किली से होता था, बचत होने का तो सवाल ही नहीं था। परिवार लंबा चौड़ा होने से बचने का तो सवाल ही नहीं था, वो सीधा ही हो गया। देखो वो प्रारब्ध लेकर आए क्या हुए, इसलिए वो बोझा कितना भी उठाता था इसका मतलब कोई था नहीं। तो सब होता है, सबका प्रारब्ध अनुसार होता है। पर वो पूर्व कर्म किया कि नहीं किया सब जीव ने, वो प्रारब्ध लेके आए कि नहीं आए, प्रारब्ध से कोई खाली होते है क्या?
नहीं।
फिर तुम कोई फेरफार कर देते हो क्या, तो उसमें कोई मदगर कर देते तो कमी बेसी कर देते क्या? संभव हो ही नहीं सकता। फिर भी लौकिक भाव से प्रवृत्ति करें व्यवसाय की या निर्वाह की या कुछ भी, और आत्महित की इच्छा करें यह न होने जैसा ही कार्य है, ये बात बनने वाली
नहीं है।
आत्महित कभी होने वाला
नहीं
है। क्या शिक्षा दिया कि आत्महित करना है तो लौकिक भाव से व्यवसाय मत करो। हम सब व्यवसाय करने वाले हैं ना, उसको लागू पड़ता है सीधा, मुमुक्ष को सीधा लागू पड़ता है। लौकिक भाव से मत करो, जो भी होने योग्य है होगा, प्रामाणिकता से हर काम करो होने वाला होगा। लेकिन ममत्व रख करके मैं निर्वाह कर देता हूँ सारे परिवार का, ये लौकिक अभिप्राय आत्मा के हित को करने देगा नहीं, हित हो जाएगा, हित तो नहीं करने देगा लेकिन अहित हो जाएगा, ऐसे परिणाम से अहित होता है। यह न होना मैंने आत्महित न होने जैसा ही कार्य है, क्योंकि लौकिक भाव के कारण जहाँ आत्मा को निवृत्ति नहीं होती है वहाँ अन्य प्रकार से हित विचारना होना संभव नहीं है। क्या लिखा, क्योंकि लौकिक भाव के कारण जहाँ आत्मा को निवृत्ति नहीं होती, निवृत्ति नहीं होती मैंने लौकिक भाव में लगे रहते हैं, कितना भी हो आगे ही बढ़ो आगे ही बढ़ो, पता नहीं लगता है कि जिसको कुछ प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं है वो लोग क्यों प्रवृत्ति करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जिसको जरूरत नहीं है फिर क्यों करते हैं, तो बस लौकिक भाव है, ये करते रहो ये करते रहो, इस कारण से कोई ना कोई अभिप्राय को बना रख करके करते हैं। तो उसमें आत्मा को आत्मकल्याण के लिए निवृत्ति नहीं मिलती। अन्य प्रकार से हित विचारना होना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें ही परिणाम लगे रहते हैं, परिणाम उससे निवृत्त नहीं होते तो आत्मकल्याण की विचारना नहीं होती। यदि एक की निवृत्ति हो तो दूसरे का परिणाम होना संभव है, एक की मैंने लौकिक भाव की निवृत्ति हो। क्या बोले हैं, लौकिक भाव की व्यवसाय छोड़ना आसान है, लौकिक भाव छोड़ना आसान
नहीं है,
नहीं है। लौकिक भाव की निवृत्ति करो, जब अलौकिक परिणाम होंगे, अलौकिक परिणाम कब होएगा, लौकिक परिणाम नहीं होगा तब। लौकिक परिणाम रखना भी है और अलौकिक परिणाम करना भी है, श्लोकवाद बनने वाले नहीं है।
अहित हेतु ऐसे संसार संबंधी प्रसंग, लौकिक भाव, लोक चेष्टा, इन सबके संभाल यथा संभव छोड़ करके उसे कम करके आत्महित को अवकाश देना योग्य, बहुत साफ साफ बात लिखा है। हो सके उतना लौकिक प्रसंग, संसार संबंधी प्रसंग कम कर दो, सांसारिक प्रसंगों को कम कर दो। ये लौकिक भाव खास करके घर पे कोई प्रसंग आता हो या आने वाला होता हो उसमें ज्यादा रहता है। शादी वगैरह का, लड़का लड़के की शादी होती है, बहुत लौकिक भाव में जीव आ जाता है कि हमको ये करना होगा, वो करना होगा, ये करना होगा, वरना हमारा अच्छा दिखेगा नहीं। दूसरे को अच्छा दिखाना यही लौकिक भाव है, और अच्छा दिखाने के लिए कोई प्रयास होना ये लौकिक चेष्टा है। दो बात लिखी ने, संसार का कोई भी प्रसंग उदयमान हो उसमें अच्छा दिखाने का अभिप्राय रहना वो लौकिक भाव है, और उसी अभिप्राय अनुसार प्रयास होना वो लौकिक चेष्टा है। संसार संबंधी प्रसंग, इसमें लौकिक भाव, उसमें लौकिक चेष्टा, ये सब के संभव छोड़ देना। यथा संभव मैंने जितनी ताकत हो
छोड़ देना,
उतनी पूरी ताकत से छोड़ना, जितना हो सके उतना उसकी संभाल छोड़ना। उसको छोड़ना ऐसा नहीं, उसकी संभाल छोड़ना, सावधानी छोड़ना, सावधानी नहीं रखना है। जो भी जैसा दिखे वैसा दिखे, हमको ज्यादा पचड़े में जाना नहीं है। संक्षेप कर दे, इसकी सबकी यथा संभव संभाल छोड़ करके उसे कम करके देखो, ये संसारियों को तो बुरा लगेगा, इसका संसार का अभिप्राय उसको क्या लगेगा कि ये कोई शिक्षा देने की बात है, ये कोई धर्म की बात है। हाँ, संसार का कार्य तो अच्छी तरह करना ही चाहिए ने, इसकी संभाल छोड़ देना कि किस प्रकार की शिक्षा है, ऐसा धर्म होता है क्या? हाँ, क्या जिसकी संभाल होती है वो क्या कहेगा, क्या हमारी संभाल आपको छोड़ देना, ऐसा आपको आप लोगों को सिखाया जाता है क्या? हाँ, कि हमारी संभाल छोड़ देना, ये बात बराबर नहीं है। आपको हमारी बराबर संभाल रखनी चाहिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो हमको बहुत दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
दुख हो जाएगा।
तो ये ज्ञानियों की पागलपन की शिक्षा है। कैसी लिखा एक जगह सुबह भाई को कि आप अपने परिवार के प्रति निस्नेह हो, क्या यानी प्रेम मत करो परिवार से, ऐसी गाली शिक्षा तुमको हम लिखते हैं क्या? ऐसी बात है। तो जिसको प्रेम मिलता है, जिसकी अपेक्षा का पोषण होता है, जिसकी संभाल होती है, उसको लगेगा कि ये कोई तरीका होता है क्या, धर्म का ये कोई तरीका होता है क्या कि आपस में जो प्रेम है वो मिटा दे, हाँ स्नेह को मिटा दे, वो कोई तरीका है धर्म करने का, ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसे प्रतिबंध छोड़े बिना, इस प्रकार के परिवार के प्रतिबंध छोड़े बिना मुमुक्षु की भूमिका का भी कोई प्रारंभ होता
नहीं है,
नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना तो दूर, बहुत दूर है, सम्यक दर्शन तो बहुत दूर है, मुमुक्षु की भूमिका का भी प्रारंभ नहीं होगा, ऐसी बात है। ये तो ऐसा ही होता है, संसार का प्रेम केवल स्वार्थमय होता है, थोड़ा भी अपने राग निकाह प्रसारण नहीं हुआ
तो राग की जगह द्वेष आया बिना रहेगा नहीं। कहाँ गया तुम्हारा प्रेम? द्वेष हो गया तो प्रेम गया कहाँ? तुम्हारा किधर चला गया? हाँ, ये प्रेम के नाम से राग होता है और वो द्वेष के साथ हमेशा रहता है। राग द्वेष के बिना कभी अकेला रहता
नहीं
है। द्वेष कभी छिपा हुआ रहता है तो कभी बाहर आ जाता है, लेकिन वो द्वेष के साथ ही हमेशा रहता है। एक सिक्का के दो बाजू है, राग और द्वेष। ऐसी परिस्थिति हो ही जाएगा, द्वेष हो ही जाएगा, गुस्सा आ ही जाएगा, क्रोध करेगा ही करेगा। अपना राग का पोषण नहीं होगा तो द्वेष के बिना रहेगा नहीं। संसार संबंधी प्रसंग है उसमें संभाल छोड़ना, तो अपना संभाल करता है कौन? अपना परिणाम करता है। वो संभाल के परिणाम को छोड़ देना। संसार संबंधी प्रसंग तो जो आएगा वो आएगा उदय में, उसमें तो फेरफार करने का इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र का भी अधिकार नहीं है। लेकिन संभाल अपन करते हैं, वो संभाल करना वो उल्टा पुरुषार्थ है और संभाल छोड़ देना वो सुलटा पुरुषार्थ है। तो अपना परिणाम में ही फर्क करना है।
ये
प्रसंग की संभाल सब, इन सबकी संभाल यहाँ लागू पड़ता है। संसार संबंधी प्रसंग, लौकिक भाव और लोक चेष्टा, तीनों की संभाल एम लेना है। ऐसे ऐसे लागू पड़ता है, संभाल तीनों को लागू पड़ता है। उस संभाल को यथासंभव छोड़ करके आत्महित को अवकाश देना योग्य है। आत्मा के हित के लिए जगह रख लेना। अगर ये संभाल में पड़ जाएगा तो फिर आत्महित की जगह रहेगी, ये दौड़ लंबी हो जाएगी संसार के, और इस दौड़ में से कोई निवृत्त होते नहीं। आयुष पूरा हो जाता है, जाओ मनुष्य भोग पूरा।
अरे ज्ञानी शोध करवानी हो तेरे अपने के व्यवहार में, तो निमित्त ने शोधवान हो तो क्या अपने दय पर नहीं छोड़ देता ध्यान का? ज्ञानी भी शोध करवानी हो पर संयोग से ज्ञानी पर छता आपने ध्यान कही है कि क्या तो व्यवहार पुरुषार्थ करवो
करवो સદગુરુ તો આવી મળેલા હોય છે શરૂઆતમાં, તો ખચિત પુરુષાર્થ કરવો, કેમ કે નહીં તો ઓલી બાજુ પેલા વગર નહીં રહીએ, ડાયવર્ઝન આપે છે અહીંયા કે તારો તેરા સંસાર સંબંધી પુરુષાર્થ તું બંધ કરવા ચાહોગે તો ભી છૂટેગા નહીં। જો એ પરિસ્થિતિ હૈ તો તું ઉસકો ડાયવર્ટ કર દો, સદગુરુ કી ખોજ મેં લે જાઓ, સત્સંગ ખોજ સત્સંગ કો જુટાને મેં લે જાઓ, ફિર સત્સંગ મેં વો કેસે સહેજ હો જાયેગા વો માલૂમ પડેગા। લેકિન એક દફે તો ઉસકો ઉસી કી તરીકા સે ડાયવર્ઝન દેના પડતા હૈ। ऐसे संसार की चिंता करता है तो कभी मोक्ष की करो, सब जगह डाइवर्जन देते हैं, यही सही रास्ता है, ये उपाय सच्चा है। मुश्किली हो तो प्रामाणिकता से तो प्रयास करे, लेकिन ममत्व रख के करे, पर ममत्व छोड़ के करे। उसमें करने में तो जो करना है वही करना है, अंदर में फेरफार करे तो क्या आपत्ति है? नुकसान से तो बचता है, प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, पर भाव में फर्क है। बिल्ली बच्चे को भी पकड़ती है और चूहा को भी पकड़ती है, पकड़ पकड़ में फेर है। तो प्रवृत्ति तो ज्ञानी भी करते हैं, पकड़ में फेर है उसमें, ज्ञानी प्रवृत्ति नहीं करते क्या? वो तो मुंबई में बैठे बैठे तो लिखते हैं ये। आत्महित के लिए सत्संग जैसा बलवान अन्य कोई निमित्त प्रतीत नहीं होता। देखो ये बहुत वह तो पूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन है कि किसी को भी आत्महित करना हो तो सत्संग जैसा बलवान साधन कोई है
नहीं,
इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। पूजा करना क्या नहीं करना, ये सत्संग पहले करना। दूसरा कुछ करना क्या नहीं करना, पहले सत्संग करो, बाद में अवकाश हो तो हो, तो हो नहीं हो तो नहीं हो। फिर भी वह सत्संग भी जो जीव लौकिक भाव से अवकाश नहीं लेता, मेरे संसारी प्रसंग में लौकिक भाव चालू रखता है, उसके लिए प्राय निष्फल होता है। तो सत्संग में क्या करेगा, वहां भी लौकिक भाव में आ जाएगा, वहां भी ये मंडल में, ये सर्कल में, ये संप्रदाय में, ये समूह में मेरा अच्छा दिखना चाहिए, मेरा सबसे दिखाव अच्छा होना चाहिए, लौकिक भाव में आ जाएगा। उसको सत्संग फलवान होता नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं ऐसे लेना है, मैं कुछ
नहीं
हूं ही नहीं, मैं तो आत्म कल्याण के लिए गुपचुप मेरा काम करने को आया हूं, मुझे कोई इसमें इज्जत का दर्जा फरकाना नहीं है। लौकिक भाव में इज्जत के दर्जा का फरकाने लगता है, सत्संग को निष्फल करता है। और सत्संग कुछ सफल हुआ हो तो भी यदि लोकावेश विशेष विशेष रहता हो तो उस फल के निर्मूल हो जाने में देर
नहीं
लगती। थोड़ा सत्संग सफल हुआ हो क्या होता है, शुरू शुरू में खुद नया नया आता है तो प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा रखता है, जानकारी करता है, फिर कुछ सत्संग कुछ टाइम पर बना रहता है तो दूसरे कोई नए आते हैं उनको पूछने लगते हैं, क्या होता है पोजीशन चेंज होती है, पहले पूछने वाला था अब उत्तर देने वाला हो गया क्या हो गया, लौकिक लोकावेश में आ गया कि मेरा स्थान कोई बना है, अभी हमको मेरा स्थान बना है। तो थोड़ा भी उसको फल हुआ था निर्मूल होने में देर लगती
नहीं है।
उसी टाइम वो निर्मूल हो जाता है, अहम भाव आया खत्म। और स्त्री पुत्र आरंभ तथा परिग्रह के प्रसंग में यदि निज बुद्धि छोड़ने का प्रयास न किया जाए तो सत्संग के सफल होने का संभव कैसे हो ही नहीं सकता, निज बुद्धि छोड़ने का है ये प्रतिबंध है। कुटुंब प्रतिबंध छोड़ने की बात क्या है कि उसमें अपनत्व करना नहीं है, कार्य करो अपनत्व के बिना, कार्य तो उदय का प्रारब्ध रूप बंधन है लेकिन प्रतिबंध में रह करके नहीं करो, बंधन को भोगना पड़ेगा, प्रतिबंध को छोड़ना है। जिस प्रसंग में महाज्ञानी पुरुष संभल संभल कर चलते हैं उसमें इस जीव को, मुमुक्षु जीव को तो अत्यंत अत्यंत सावधानता से संकोच पूर्वक चलना चाहिए, बहुत संभाल संभाल करके चलना चाहिए, यह बात भूलने जैसी ही नहीं है। ऐसा निश्चय करके हर प्रसंग में, प्रसंग प्रसंग में, कार्य कार्य में और परिणाम परिणाम में उसका ध्यान रखकर उससे छुटा जाए, वैसे ही करते रहना, यह हमने श्री वर्धमान स्वामी की छद्मस्थ मुनिचर्या के दृष्टांत से कहा था ऐसी बात हमने कही थी, भगवान महावीर के छद्मस्थ चर्या और मुनिचर्या जो थी उसकी कोई चर्चा करते हुए हमने वो बात कही थी कि जिस प्रसंग में ज्ञानी पुरुष भी संभाल करके चलते हैं मुमुक्षु जीव को तो बहुत सावधानी रखना जरूरी उनका ही है, वरना कहाँ कितना नुकसान हो जाएगा खुद को ही पता चलेगा, ये बात हो जाएगी। जो आखिर का पैराग्राफ है उसमें बहुत अच्छी बात किया है, कि एक तो सत्संग बलवान साधन है और जो जिसको सत्संग प्राप्त है उसको दो बात का ध्यान रखना है, एक तो लौकिक भाव रखना नहीं। लौकिक भाव मैंने लोग अच्छा, मेरा दूसरे के नजर में मेरा अच्छा दिखे, दूसरे लोगों के नजर में मेरा अच्छा दिखे, इस प्रकार के भाव को जहर समझना, फालतू जहर कर समझना, वो जहर पीने लायक नहीं होता। दूसरा अपने परिवार में निज बुद्धि रखना नहीं, ये मेरे हैं ये गड़बड़ है, ये मेरे हैं तो मेरा आत्मा मेरा रहने वाला नहीं है, आत्मा में मेरापन करना है तो उसका मेरापन छोड़ना पड़ेगा, दो जगह मेरापन हो सकता नहीं है। तो गंभीरता से इस विषय को समझना चाहिए और उसका अमलीकरण करना